सिद्धेव्य आचार्य भगवान का समय सार और उस समय सार में हम पुण्य पाप अधिकार को देख रहे हैं और इस पुण्य पाप अधिकार के 145 नंबर की जो गाथा है उस गाथा के पृष्ठ क्रमांक हम 37 पर आए हैं। देखो यहां बात तो वो हो रही है कि यहां अज्ञानी चार पॉइंट बताता है और कहता है कि ये शुभ और अशुभ जो परिणाम है उसमें कोई फेर नहीं है, तो जो चार पॉइंट बताते उसी चार पॉइंट के ऊपर यहाँ आचार्य समझाते हैं कि वो दोनों एक ही है। उनका कहना है कि पाप जुदा है, पुण्य जुदा है, उसका फल जुदा है, हेतु जुदा है, स्वभाव जुदे हैं, इस तरह से उन्होंने बात उठाई थी। तो यहाँ कहते हैं ये सब आपका कहना अलग है और वो वास्तविकता ये है, वो बात अपनी चल रही है। तो हम पृष्ठ क्रमांक 37 पर आए हैं। देखो यहाँ हम प्रश्न को पढ़ते हैं, तो नरक नो भय तो लागे छे। हाँ, नरक नो भय साथी लागे छे के नरक प्रतिकूल अने दुखमय छे अने स्वर्ग अनुकूल अने सुखमय छे एवी तारी मान्यता ने लीधे नरक नो भय लागे छे, पन भाई ए मान्यता खोटी छे। क्या कहा? नरक में दुख है और वहां प्रतिकूल संयोग है, और स्वर्ग में अनुकूल संयोग है और वहां सुख है, वहां ऐसा यह जीव मानता है। ये मान्यता कब से चल रही है? अनादि से चल रही है। तो इसमें तारी मान्यता खोटी छे ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं, तो क्यों खोटी है ऐसा हमें विचार करना चाहिए ना। हाँ रूपाली, आप बताएंगे। हाँ क्या दीपाली, रूपाली ने, अरे जो भी हो। हाँ आप बताएंगे ऐसा क्यों कहा, मान्यता क्यों खोटी है? हाँ जोर से, मिथ्यात्वी केम छो? यहाँ लिखा क्या है देखो, ये मान्यता खोटी छे। तो ऐसी खोटी क्या मान्यता है, वहां क्या मान्यता है उस जीव की कि स्वर्ग में अनुकूलता है इसलिए जीव सुख होगा और नरक में प्रतिकूलता प्रतिकूल संयोग है और इसलिए वहां दुख है। तो उसमें उसने कौन सी खोटी मान्यता की, ऐसा प्रश्न है। देखो मम्मी हाथ उठा रही है। हाँ बोलो बेन। हाँ परमा। हाँ हाँ, यानी कल क्या बात हुई थी, पर वस्तु जो है वो ना साधक है ना बाधक है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, कल ही बात हुई थी ना। और आज मैंने इसलिए तो पूछा। क्या कहा, सुनो सुनो सुनो। देखो जो संयोग है ना, संयोग यानी क्या है, अभी इन शॉर्ट हम देखेंगे तो जीव द्रव्य भी संयोग में है, पुद्गल भी है, है ना। अभी मैं एक जीव हूं तो आप भी जीव हो, तो संयोग में है ना, हम मिलते रोज। तो जो संयोग में है, अभी हम गाड़ी है, मोटर है, घोड़ा है, वो मत देखो, वो तो पुद्गल है। और मैं आपको पूछता हूं, क्या सिद्ध जीव है उनके संयोग में अन्य पांच द्रव्य क्या छह ही द्रव्य है क्या नहीं? क्योंकि देखो लघु सिद्धांत परिशिखा में हमने सबसे पहले सीखा था, छह द्रव्यों का एक क्षेत्र का संबंध है। आकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां छह द्रव्य नहीं है। तो फिर संयोग से अगर सुख या दुख होता था, यानी उसके कारण से, तो हम सिद्धों को भी दुख होना चाहिए या सुख होना चाहिए उसके कारण से। लेकिन वो तो उनके कारण से नहीं, वो तो अपने स्वरूप में एकाग्र है, तल्लीन है, एकदम एकमेक हो गए हैं, जब ही तो अनंत सुखी है। पर पदार्थों के कारण सुखी या दुखी नहीं है वे, वैसे हम भी नहीं है। लेकिन हम मानते क्या है कि स्वर्ग में अनुकूलता है, अच्छे संयोग मिलेंगे, अरे कुछ काम नहीं था, हमने जाके कल्प वृक्ष नीचे बैठे, फटाफट सब खाने को मिला, कपड़े मिले, ये सब जो चीज है। और नरक में अरे ऐसी भयंकर उष्णता है, ऐसी भयंकर गर्मी है, ठंडी है, ये है वो है, तो हम संयोगों से दुखी है ऐसा मानते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि संयोग से तो सुखी दुखी नहीं, तेरी खोटी मान्यता से तू सुखी है दुखी है, यानी लौकिक सुख, असल सुख नहीं। अभी देखो मैं आपसे पूछूंगा कि कोई अमेरिकन आदमी है, गोरा गोरा है, तो गोरेपन से सुखी होगा क्या दुखी होगा? और उधर ही अमेरिका में रहने वाला एक निग्रो लेना, तो क्या कहते हैं, शरीर के कारण सुखी दुखी है क्या? वो तो कहना यह चाहता हूं कि अपने को उस रूप उसने मान रखा है कि मैं ऐसा हूं इसलिए वह दुखी है, असल में तो मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा उसने जाना ही नहीं। फिर अभी हमारे पड़ोसी खोटे हैं, हमारे गाड़ी में ऐसी तकलीफ है। मुझे बहुत पुरानी याद आई, जब हमारे बंबई में टेलीफोन्स बहुत कम थे, हमारे दुकान में हमको जल्दी मिल गया था, तो बाहर के लोग हमेशा टेलीफोन करने आते थे और पैसा देके टेलीफोन करते थे। नहीं उस समय आठ आना या चार आना था क्या मालूम, तो एक पारसी आता था, तो एक फला फला ऑलविन रेफ्रिजरेटर लिया था उसने, तो फिर बहुत चिल्लाता था, आपका आदमी आने वाला था नहीं आया है, ऐसा है वैसा है, क्या हो गया? पेलो के छे, तो पारसी था ना, कि हजार मानस में एकाद ने कोई ने ये आओ खोटो माल मरे, क्या मारो ज नंबर केम आयो है वो हजार मा तो वैसा ये मेरा ही क्यों ऐसा नंबर हो गया, कि मेरी ही अपने में एकत्व बुद्धि है ना, कि पर पदार्थों से मैं सुखी होऊंगा या पर पदार्थों से मैं दुखी होऊंगा। तो वो तो कह रहे कि आ मान्यता तारी खुटी छे, तो दुखी।
देखो कल हमने देखा था ना ये 36 पृष्ठ पर, ये तीसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन, जानेला गेयमा भेद पाड़े छे ते मिथ्या तो भाव छे, 36 पेज पर।
इधर
हाँ, ऊपर से जो तीसरा पैराग्राफ है चौथी लाइन, उसमें देखो अनुकूलता, तीसरी लाइन से अनुकूलता मा ठीक ने प्रतिकूलता मा अठीक,
मिल गया
एम जानेला गेयमा भेद पाड़े छे ते मिथ्या तो भाव छे। तो स्वर्ग मा सुख है के दुख है? तो संयोगों से सुख मिलता है ऐसी मिथ्या मान्यता है, वो इटसेल्फ दुख रूप है। वहां मिथ्या मान्यता से और राग द्वेष से दुखी है ना जी,
तो यहां जो कह रहे हैं कि ये मान्यता खोटी छे। अभी क्या कहते हैं, योग सार दोहा मा, दोहा पांच मा तो एम कहूं छे के चार गति दुख थी डरे तो तज सौ पर भाव। यहां तो ये नरक के भय लगता है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं योगसार में कि चार गतियों से दुख से तू अगर डरता होगा तो तुझे क्या करना है, तो तज यानी तब तू त्याग कर किसका, सौ यानी एक सौ नहीं पूरे हा? सारे परभावों का तू त्याग कर, परभाव यानी पर पदार्थों के प्रति तेरे जो अनुकूलता प्रतिकूलता के जो परिणाम है उसको तू छोड़ दे, एटले चारे गति दुखरूप छे एम त्यां कहूं छे, एकलो नरक नो भव भयकारी दुखकारी छे एम नथी कहूं, तने एकला नरक नो भय छे केम के तने नरक थी द्वेष छे, तथा तू स्वर्ग चाहे छे केम के तने स्वर्ग थी राग छे, आवा राग द्वेष थवा एनुज नाम संसार छे। वड़ी त्या दोहा एक त्रण मा आचार्य योगिंद्र देव कहे छे के जेवो भय थी भयभीत छे, जेवो भव थी भयभीत छे अने मोक्षना इच्छुक छे तेमना चित्तनी शुद्धि माटे हूँ आ मार्ग कहूँ छू। भाई भव मात्र चाहे स्वर्ग नो हो तो पन इच्छवा योग्य नथी। समझाणु काय माटे आई कहे छे के कर्मना फळमा कर्मना फळना अनुभवमां फेर नथी। हवे चौथो आश्रयनो बोल। अज्ञानीनो आ पक्ष छे के मोक्ष मार्गमां शुभ आवे छे बंद मार्गमां नहीं। जो मोक्ष मार्गना आश्रय तीर्थंकर प्रकृति बंधाय, आहारक शरीर बंधाय, सर्वार्थ सिद्धिनु आयुष्य बंधाय इत्यादि। अभी कल हमने देखा था तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनती है, हमने देखा था, याद है? हाँ, चौथे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान। ये क्यों पूछा मैंने, आगे देखो क्या कहा। तीर्थंकर प्रकृति बंधाय अने आहारक शरीर बंधाय। अभी ये आहारक शरीर नाम कर्म जो है वो कौन से गुणस्थान में बंधता है मालूम है आपको नलिन भाई? हाँ, आप क्या कहते हैं? छठे गुणस्थान। मैंने क्या पूछा, आहारक शरीर जो बंधने का काम होता है ना, आहारक शरीर नाम कर्म, वो बंधने का कार्य, जैसा तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है? चौथे से आठवें तक सबने बताया। तो आहारक शरीर जो है उसका कर्म बंध जो है वो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में होता है, ये मेरे पूछना था। हाँ हाँ बोलो बहन, आपको तो याद होना चाहिए। हाँ हाँ, अरे हम कभी बनता है पूछ रहे हैं। हाँ, क्या ये बात सही है बहन, सही है क्या गलत है? सही है। अभी अश्विन भाई तो नहीं, तो किसको पूछे हो? तो अभी हम पूछेंगे, और कौन कहना चाहता था यहाँ पर? हाँ पिनांग भाई आप कहेंगे। हाँ आप क्या कहते हैं, सातवें में और आठवें गुणस्थान में आहारक प्रकृति का बंध होता है? हाँ आठवें में भी होता है। ओ ये समझने जैसी बात है, उधर जाके मुझ पे ताव मार के बोलना। तीर्थंकर प्रकृति पहले बंद होता है, उदय बाद में आता है। ये प्रकृति बाद आगे के गुणस्थानों में बनती है, सातवें और आठवें में। तो आठवें में बनने के बाद वो तो मोक्ष जाएगा ना? नहीं, उपशम श्रेणी मानने वाला होगा वो भी बांधेगा ना, तो नियम से नीचे आता है। तो सातवें में और आठवें में आहारक शरीर नाम कर्म प्रकृति है ना, वो बांधे। और उदय कभी होता है तो छठे में।
और ऐसा है ना, आहारक बांधी और उसका उदय होगा ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बारे में भी ऐसा होगा ना, उसका तो उदय होता है।
देखो फिर से क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग ना आश्रय तीर्थंकर प्रकृति बंधा है, आहारक शरीर बंधा है, सर्वार्थ सिद्धिनु आयुष्य बंधा है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि का आयुष्य कौन से गुणस्थान में बंधेगा? क्या भाई सौभाग मल जी, या मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ आज? हाँ हाँ आप क्या कहते हैं साहब, और आगे कोई कहने वाला है? सिर्फ 11वें में देखो, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में, तो 12वें में भी बंदे के नहीं?
आयु का बंध 7वें के आगे होता ही नहीं किसी को।
अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि आयु का बंध, आयुष्य कर्म का बंध 8वें में नहीं होगा, 7वें में ही होगा, या 6वें में?
6वें 7वें वाले को, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि का वो भावलिंग मुनि को ही बंद होता।
हाँ,
है
डॉक्टर साहब, आपने जो कहा था ना कि 11वें में मरण होने के बाद वो डायरेक्ट जाएगा सर्वार्थ सिद्धि,
ये मर कर जाते हैं परंतु बंद, आयु का बंद तो पहले हुआ।
हाँ,
क्योंकि जो 6वें में जिसने प्रारंभ किया है वो 7वें तक बांध सकता है, 7वें में कोई प्रारंभ नहीं करता।
बहुत अच्छा, मैं भी गलत बोल रहा था। हाँ सुनो, ये सर्वार्थ सिद्धि का आयु बंध 6वें और 7वें गुणस्थान में ही होगा, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में नहीं होगा, क्योंकि 7वें के बाद आयु का बंध ही नहीं होता है।
मैंने ऐसा कहा कि कोई आयु का बंध का प्रारंभ जो है 7वें में नहीं प्रारंभ करता, 6वें में जिसने प्रारंभ किया है, अंतर्मुहूर्त तक बनती है ना आयु, तो उसका वो बंधने का कार्य 7वें में भी चालू रहता है, परंतु 7वें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थानों में आयु का बंध नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नियम है अति विशुद्ध परिणामों में आयु का बंध नहीं होता। तो ऊपर तो अति विशुद्ध परिणाम है 8वें गुणस्थान से ऊपर, वहां किसी को आयु नहीं बनती। क्षपक श्रेणी की तो बात ही नहीं है, वहां तो आयु का बंध का सवाल ही नहीं है। जिसने आयु का बंध नहीं किया होगा वही तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। उपशम श्रेणी वाले को भी उपशम श्रेणी के काल में आयु का बंध नहीं होगा।
यानी आपका कहना ऐसा कि 7वें में आयु का बंध नहीं होगा,
स्टार्टिंग नहीं होगी, आयु का बंध तो है।
नहीं नहीं नहीं, 7वें में जाने के बाद आयु बंध नहीं होगा।
हाँ, बिगिनिंग नहीं होगी वहाँ पर,
और एंड भी नहीं होगा ना, ये बिगिनिंग ही नहीं होगी तो
एंड हो सकता है ना। 6वें में से चालू किया
तो 7वें में बंध एंड करेगा,
6वें में आयु का बंध चालू किया, वो 6वें से 7वां गया तो भी आयु का बंध चलता रहता है। श्रेणी के गुणस्थानों में आयु का बंध नहीं होता। हाँ, 7वें में बंध के, आयु के बंध की विच्छित्ति होती है 7वें में।
तो 7वें में आयु के बंध की विच्छित्ति होती है,
वो देवायु के बंध की विच्छित्ति है ना।
ठीक है,
हाँ।
तो फिर 7वें के अंत में भी हो सकती है ना, वो बंध की विच्छित्ति कब कहेंगे हम?
हाँ, यानी 7वें के आगे के गुणस्थानों में है ही नहीं।
नहीं, आपने ये जो बताया कि 6वें वाला 7वें में आएगा ड्यूरिंग द आयु बंध,
हाँ।
तो फिर उसकी 7वें में हम विच्छित्ति कह रहे हैं, तो 7वें के अंत तक विच्छित्ति गिनी जाएगी कैसे, किस तरह से?
हाँ, 7वें के अंत ने 7वें के ऊपर 8वां लेना है, वो 7वें में से 6वां आने वाला है उसको ऐसा उल्टा नहीं समझते, यानी अंत तक, अंत के समय तक बंधना चाहिए ऐसी बात नहीं है वहां पर।
अच्छा, तो हम ऐसा कह सकेंगे 7वें के बाद आयु बंध होता ही नहीं है बस?
हाँ, 7वें के बाद नहीं होता। जैसे दूसरे गुणस्थान के बंध विच्छित्ति कहते हैं तो क्या है, दूसरे के बाद नहीं होता, दूसरे में से वो तो पहले में आने वाला है, फिर भी तीसरे चौथे गुणस्थान में जो प्रकृति नहीं बनती है, जैसे अनंतानुबंधी का प्रकृति का बंध दूसरे को है, तीसरे वाले को है ही नहीं है, तो हम कहेंगे दूसरे में बंध की विच्छित्ति हुई। दूसरे में से पहले में जाने वाला है और अनंतानुबंधी कंटिन्यूस होने वाला है, फिर भी ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है, तो हम कहते उसकी वहां बंध की विच्छित्ति हुई। ऐसे यहाँ पर देवायु का बंध 7वें में हो सकता है, किसी भी आयु का या देवायु का भी बंध ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है, हम कहेंगे 7वें में उसके बंध की विच्छित्ति हुई। आपका प्रश्न है अनुदेश और अनुत्तरों में भावलिंगी संत ही जाते हैं ना? हाँ, वे ही जाते हैं। उनका मरण उपशम श्रेणी में हो तो वो मरकर वहां से भी जा सकते, परंतु वो बंध उन्होंने 6वें 7वें में किया है।
चलो देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरे लाइन से पढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग ना आश्रय तीर्थंकर प्रकृति बंधा है, आहारक शरीर बंधा है, सर्वार्थ सिद्धि नु आयुष्य बंधा है इत्यादि आ बधु समकीति ने मोक्ष मार्ग में संभवे छे, पन मिथ्या दृष्टि ने होतु नथी। यानी मिथ्या दृष्टि को सर्वार्थ सिद्धि को मोक्ष मतलब स्वर्ग नहीं मिलेगा, मिथ्या दृष्टि को आहारक शरीर नहीं बंधेगा, मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। जो आ अज्ञानीनो पक्ष छे के मोक्ष मार्ग ने लईने शुभ भाव छे, अज्ञानी ने ते होतो नथी, माटे शुभाशुभ कर्म मा भेद छे। तेने कहे छे भाई शुभ ने अशुभ कर्म बन्ने बंध मार्ग ना ज आश्रय छे, बन्ने बंध पद्धति रूप छे, एके मोक्ष मार्ग रूप नथी, माटे शुभ मोक्ष मार्ग ना आश्रय नथी। गंभीर वात छे प्रभु, पन शू थाय मानस ने जे वात कोठे पड़ी गई होय, अने ते रूपे जाने आत्मा थई गयो होय एवी मान्यता दृढ़ थई गई होवी, एटले एने एमाथी खसवू केम गोठे, यानी उसको वो त्याग करने को तैयार नहीं है सके थे। शुभ भाव थी मोक्ष मार्ग छे एवी दृढ़ मान्यता वाला ने हूँ आत्मा छू, अने निज स्वभावना आश्रय मोक्ष मार्ग छे एम फेरवू केम गोठे। आई कहे छे हेतु स्वभाव अनुभव अने आश्रय ए चार नो अर्थात चारे प्रकारे सदाय अभेद हुआ थी कर्म मां निश्चय थी भेद नथी। अरे अज्ञानी जीव पोतानू जे शुद्ध अंतस्तत्व छे तेने जोवानी नवराश लेतो नथी, अनादी थी एने स्वने जोवामां प्रमादी थईने परने ज जोवानो मिथ्या पुरुषार्थ कईरो छे। पण भाई ए परने जाणनार तू पोते आत्मा छो के नही, परने जाणू एम तू कहे छे पण ए जाणनारो कोण छे, એ જ તું છો। પરને જાયનું જાયનું એમ જે કહેવું છે એ તો બીજી અપેક્ષા થઈ ગઈ, વ્યવહાર થઈ ગયો। આ સ્ત્રી જોઈ, પુત્ર જોયો, દુકાન જોઈ, આ જોયું તે જોયું એમ કહેવું એ અસદભૂત વ્યવહાર નહીં છે, અને જોવામાં જે ભેદ પાડ્યો એ મિથ્યાત્વ છે। અરવિંદભાઈ વાત સમજમાં આવી? देखो क्या कहते हैं, एम कहवू आ जोयो ते जोयो एम कहवू ते असद्भूत व्यवहार नहीं छे, अने जोवामां जे भेद पाड्यो छे ए मिथ्यात्व छे। यानी जो जानता ही नहीं ऐसा कहना भी मिथ्यात्व है, भेद पाड़ा ना उसने,
यानी वो गयो में भेद पाड़े हमने। जो जो चीजें ज्ञान में आए, जैसे हमने पहले देखा ना स्वर्ग में और नरक में गेयों में जो भेद पाड़ते वो मिथ्या तो भाव है, वैसे जानने में जो चीजें आई, दुकान को जाना, सबको पैसे को जाना, ये मेरा है, मेरे लाभदायक है, ये अच्छा है, ये बुरा है,
ये मिथ्या है।
हाँ, ये भेद पाड़ा, ये मिथ्या तो है।
जो 50 स्त्रियों भी हो एमाती कहे कि आ मारी स्त्री, भाई ये क्या थी आई हूँ, 50 छोकरा हार बंद उभा हो ये तो बधा मात्र ज्ञेय छे, પણ એમાંથી આ 10મા નંબરે છે તે મારો એમ ક્યાંથી આવ્યું, ભાઈ એમ જ તો ભ્રમણા છે। એક હારમાં 50 દુકાન હોય એ 50ને જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે તેથી જાણે છે, પણ આ દુકાન આની અને આ મારી એમ ભેદ ક્યાંથી પાડ્યો, ભાઈ એ એકત્વ બુદ્ધિએ ભેદ પાડ્યો છે। આ પ્રમાણે અજ્ઞાની જીવ પરમા મારાપણાનું પરિણમન કરીને મિથ્યાત્વને સેવે છે, જ્ઞાનીને તો આખોય જગત માત્ર જ્ઞેય છે, પોતાના ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ આત્મા સિવાય ક્યાંય એને મારાપણાની એકત્વ બુદ્ધિ નથી।
દેખો તો યે વ્યવહાર કૈસા હમારા ચલેગા, અપને ઘર કો તો હમ અપના કહેંગે કે નહીં કહેંગે, હા हाँ, मान्यता में ये मिथ्यात्व का दोष लगता है। ऊपर क्या बात आई थी, ऊपर के पैराग्राफ में अंतिम दो लाइन में, एम केहू ये असद्भुत व्यवहार नहीं छे, इस व्यवहार असद्भुत व्यवहार ने से हमारा पूरा जो लौकिक व्यवहार चलता है असद्भुत, ये मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक का खाता है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, दूसरे की पराई चीज नहीं लेना, ये जो सारा जो चरणानुयोग का उपदेश है इसी असद्भुत व्यवहार ने से है। नहीं समझे? दूसरे का धन नहीं लेना है, चोरी नहीं करना है, तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं से ना, ये पराई चीज है और ये मैंने उठाई तो चोरी हो गई, इसको कहते असद्भुत व्यवहार ने। ऐसे कहना उसमें दोष नहीं है, परंतु ये मेरा है ऐसी जो मान्यता है उसको मिथ्यात्व का दोष कहा है, और वो एकत्व बुद्धि के कारण होता है। हाँ? कहना ये असद्भुत व्यवहार ने और मानना ये मिथ्यात्व।
जोवामां जे भेद पाड्यो, जोवामां एटले अभी आगे बताए ना, 50 दुकान है इसमें ये 10 नंबर की मेरी दुकान है, तो जो मेरापन जो आया वो भेद पाड़ा उसने। ज्ञान का स्वभाव तो जानना 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 जानना, दुकान 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 दुकान, पर मेरी दुकान वो चारित्र गुण का ये श्रद्धा गुण का चालू हो गया, मिथ्या का परिणाम।
जैसे जीव का शरीर है ऐसा हो गएंगे, नहीं तो एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय वाला वो ऐसा एक इंद्रिय जीव है ऐसा हमने कहा, तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ, शरीर उसका कहा हमने, परंतु हम वैसा ही जीव का उतना ही स्वरूप मानेंगे तो ये तो मिथ्या तो भाव हो जाएगा।
अशुभ भाव जेम बंधन आश्रय छे तेम शुभ भाव पण बंधन आज आश्रय छे, अशुभ छे माटे बंधन आश्रय छे अने शुभ छे माटे मोक्ष मार्ग ना आश्रय छे एम छे नहीं एज कहे छे। तत् समस्तम स्वयं माटे समस्त कर्म पोते खलु निश्चय थी। समस्त कर्म में किसको लेना नलिन भाई? समस्त कर्म बंद मार्ग आश्रितम, बंद मार्ग ने आश्रित हुआ थी, यानी यहाँ ये कर्म जो है ना ये शुभ अशुभ परिणाम को लेना भाई। देखो 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 शुभ का देखो, माटे समस्त कर्म पोते निश्चय थी बंद मार्ग ने आश्रय हुआ थी अने बंधनु कारण हुआ थी। कर्म एकज मानवामां आव्युं छे एम ज मानवुं योग्य छे। अहीं बंद मार्ग ने आश्रित नो अर्थ ए छे के शुभाशुभ भावो पोते बंधरूप छे। किसकी बात की है? भाव कर्म की बात की है। समझाणो काय आगळ केशे के जे मुक्त स्वरूप होय एज मुक्त नु कारण थाय। क्या कहा? जे मुक्त स्वरूप छे होय एज मुक्त नु कारण थाय, यानी मैं मेरा स्वभाव कैसा है तो मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ और उसका आश्रय लूंगा तो ये मुक्ति जो होनी है मुझे उसका वो कारण होगा। स्वभाव मुक्त स्वरूप है एज मुक्ति नु कारण था ऐसा कहो, पढ़ो तो अच्छा जल्दी समझ में आएगा। जे बंद रूप होय ते मोक्ष नु कारण केम थाय न थाय? आहा, सदाय मुक्त स्वभाव तो एक भगवान आत्मा छे अने तेज मुक्ति नु कारण छे। तो ऊपर भी आप मुक्ति लिख दो तो चलेगा। ओ आवी बात छे। श्रीमद राजचंद्रे कहूं छे ने के दिगंबर ना आचार्यो एम मायनू छे के जीवनो मोक्ष थतो नथी पण मोक्ष जणाय छे। देव बहुत सॉलिड दिया है, क्या कह रहे हैं? तो वो स्वयं मुक्त स्वरूप ही है ना, तो जब उसने परिपूर्णतः अपने को जाना तो मोक्ष जानने में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? वो गलत नहीं बता रहे? क्या कह रहे हैं? दिगंबर ना आचार्य एम कह्युं छे के जीवनो मोक्ष थतो नथी। तो जीवने शू थाय छे? મોક્ષ જણાય છે, અર્થાત સમજાય છે કે આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. એને અજ્ઞાનવશ એમ માન્યું છે કે હું રાગના બંધનમાં છું, પણ પોતે જે સદાય ન્યાયક છે તે રાગરૂપે ક્યાં થયો છે? ભલે એ રાગની સાથે એકત્વ માને, પણ ભગવાન ન્યાયક છે, તે રાગથી એકત્વપણે થયો નથી. પ્રવચન સાર ગાથા 200 ટીકામાં આવે છે કે જે એટલે શુદ્ધ આત્મા સહજ અનંત શક્તિવાળા જ્ઞાન સ્વભાવ વડે એક રૂપતાને છોડતો નથી, જે અનાદિ સંસારથી આજ સ્થિતિએ એટલે આજ ન્યાયક ભાવપણે રહ્યો છે, અને જે મોહ વડે અન્યથા અધ્યવસિત થાય છે, એકત્વ કરે છે, ઉલટી એકત્વ માન્યતા કરે છે, મોહ વડે અન્યતા અધ્યવસિત થાય છે, તે શુદ્ધ આત્માને આ હું મોહને ઉખેડી નાખીને અતિ નિષ્કંપ રહેતો થકો યથાસ્થિત જ જેવો છે તેવો જ પ્રાપ્ત કરું છું. દેખો યહાં પ્રવચનસાર ગાથા 200 કી યહાં બાત લી હૈ. યહાં કહેતે હૈ કે અપના આત્મા કૈસા હૈ, તો જો શુદ્ધ આત્મા હૈ વહ તો અનંત શક્તિ વાલા હૈ, ઓર વહ અપને જ્ઞાન સ્વભાવ કે દ્વારા અપને એક પને કો છોડતા નહીં હૈ, ઓર વહ ક્યા કર રહા હૈ, અનાદિ સંસાર થી જ આ સ્થિતિ ને એટલે ન્યાયક ભાવપણા ને રહ્યો છે. આજ તક ઉસકા ન્યાયક ભાવ ઉસસે છૂટા હુઆ નહીં હૈ, ઉસકે સાથ હી અનાદિ સે હૈ. ઓર ક્યા કર રહા હૈ, જે મોહ વડે અન્યથા અધ્યવસિત થાય છે, યાને ઉસમે દર્શન મોહ ઓર ચારિત્ર મોહ હૈ, ઉસકે કારણ સે જૈસા સ્વભાવ હૈ ઉસસે વિરુદ્ધ ઉસને એકત્વ બુદ્ધિ કી હૈ. એસા જીવ તે શુદ્ધ આત્માને આ હું મોહને ઉખેડી નાખીને અતિ નિષ્કંપ રહેતો થકો, યાને અચલ, મેં બસ મેં યહી જ્ઞાન સ્વભાવી હું, એસા ઉસ અડિગ રહે જાવે તો યથાસ્થિત જ, યાને જૈસા આત્મા હૈ વૈસા હી ઉસકો પ્રાપ્ત કરેગા. યાને આત્મા કો પ્રાપ્ત કરને વાલા મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો લિયા હૈ ઉન્હોને, ક્યોંકિ ઉસને અપના સ્વભાવ જાન લિયા ને, ઓર મેં એસા હી હું એસા ઉસને નક્કી ક્યા. જો ન્યાયક તો ન્યાયક જ રહ્યો છે, પણ એની માન્યતાએ ફેર પડ્યો છે કે આ રાગ મારો ને આ રાગ તારો, આ ચીજ મારી અને આ ચીજ તારી, આ કર્મ ભલું અને આ બુરું, આ માન્યતા જ ભ્રાંતિ છે. ના કર્મ ભલા હૈ ના બુરા હૈ, ના પરપદાર્થ અચ્છા હૈ ના ખરાબ હૈ, એ આપની માન્યતા હી એ ભ્રાંતિ હૈ, યાને ગલત હૈ. અરે ભાઈ, ન્યાયક તો સદા ન્યાયક જ છે, એ બંધનમાં કેમ આવે? અને એને વળી મુક્તિ કેવી? એ નિયમસાર કી બાત બતાઈ, યાને જો ત્રિકાલી સ્વભાવ હૈ વો હંમેશા ન્યાયક સ્વરૂપ હૈ. કે અભી હમને પઢા થા ના, ના મેં પ્રમત્ત હું ના અપ્રમત્ત હું, મેં તો જ્ઞાયક ભાવ હું, યાને જાનન સ્વરૂપ એસા જો કુછ હૈ જ્ઞાયક ભાવ વો મેં હું. એ જ્ઞાયક ભાવ કબ હૈ? ત્રિકાલ હૈ વો, કલ નહીં થા આજ હો ગયા, આજ નહીં કલ હોગા, એસી બાત નહીં હૈ. જો ત્રિકાલ હંમેશા હૈ, ઓર પ્રમત્ત ઓર અપ્રમત્ત યે તો પર્યાય હૈ, અવસ્થાએ હૈ, વો પલટ જાયેગી, લેકિન જ્ઞાયક પના જો હૈ, જ્ઞાયક ભાવ જો હૈ, વો કભી નહીં બદલેગા. તો યહાં કહેતે જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ રહ્યો છે, તો અનાદિ સે અભી તક ઉસમે કોઈ ફેરફાર નહીં હુઆ હૈ, ઓર ના ભવિષ્ય મેં હોના હૈ. પણ એની માન્યતાએ ફેર પાડ્યો છે કે આ રાગ મારો છે, યાને અરે રે નીચે આવે થી. ભાઈ, ન્યાયક તો સદા ન્યાયક જ છે, તો જો ન્યાયક સ્વભાવી સ્વયં હૈ તો એ બંધનમાં કેમ આવે? અને એને વળી મુક્તિ કેવી? યાને જો ત્રિકાલી મુક્ત સ્વરૂપ હૈ, મુક્ત સ્વભાવી હિ હૈ, ઉસકો મુક્તિ કહેગી. મુક્તિ કિસમે હોગી? પર્યાય મેં. ઓર વો પર્યાય મેં મુક્ત હો જાનેગા તો પર્યાય હી જાનેગી. વસ્તુમાં દ્રવ્યમાં બંધન અને મુક્તિ ક્યાં છે? ક્યુકે વો તો દ્રવ્ય હૈ ના ત્રિકાલ, ઉસમે અવસ્થા કિસ બાત કી હૈ? દ્રવ્ય સંગ્રહમાં આવે છે કે બંધાયેલાને છૂટવું કેવું એ તો ઠીક છે, પણ જે બંધાયેલો નથી અને છૂટવું કેવું એ તો ઝૂઠ છે. દેખો દેખો અભી કિસી કો હમ પૂછે હા કે આપ કબ છૂટ કે આયે સાહેબ, હા ક્યા નહીં નહીં. દેખો મેં અભી આપકો મેં શોર્ટ મેં પટાના ચાહતા થા, તુમને લંબાયા. દેખો મેં પહેલે 92 તક દુકાન મેં જાતા થા, ફિર બાદ મેં મેં નહીં જાતા થા, કભી ગયા કભી મતલબ દો ચાર મહિને મેં એક બાર ગયા આયા કુછ કામ કે લિયે ગયા, તો કભી સાલ એકાદ સાલ દો સાલ કે બાદ કોઈ મિલતા હૈ. અરે સીટ કહાં હૈ તુમ, હા નહીં તુમ ફોરેન હો કે આયા ક્યા? નહીં બાબા હમ હિન્દુસ્તાન મેં હૈ. અરે મત બોલો યાર, જો અંદર જાતા હૈ ના અંદર, એને સમજવા ને, વો કભી નહીં બોલતા કે મેં બમ્બઈ મેં થા, વો બોલતા મેં ફોરેન ગયા થા. તો તુમ કબ આયે એસા હમકો પૂછે, યાને વો એસા સમજતે કે હમને કોઈ ખોટા કામ ક્યા, ઇસલિયે 7 વર્ષ 2 સાલ કે લિયે અંદર ગયા. તો ભી આપને કિતની ખુશી હોગી, અરે હું બંધાયેલો જ નથી તો છૂટવાનું ક્યાં છે? અભી ખ્યાલ મેં તો યહાં તો ત્રિકાલી સ્વભાવ જો હૈ વો બંધા હી નહીં હૈ ના, ઉસમે કહાં છૂટને કા સવાલ હી કહાં આતા હૈ. દેખો દેખો વસ્તુમાં સેકન્ડ લાઈન, દ્રવ્યમાં બંધન અને મુક્તિ ક્યાં છે? ઓર કોઈ હમકો કહે કે નહીં નહીં તુમ છૂટ કે આયા, સચ્ચી બોલો કબ આયા હૈ, તો આપને કો ક્યા લગે? વૈસા યહાં કહે રહે દ્રવ્ય સંગ્રહમાં આવે છે કે બંધાયેલાને છૂટવું કેવું એ તો ઠીક છે, યાને જો જેલ મેં આયા ઉસકો કભી છૂટા પૂછના ઠીક હૈ, પણ જે બંધાયેલો નથી જેલ મેં ગયો જ નથી એટલે એને છૂટવું કેવું એ તો ઝૂઠ છે. ખ્યાલ મેં જે સદા મુક્ત સ્વરૂપ જ છે તેમાં નજર સ્થિર થતા તે મુક્ત જણાય છે. એ જો શ્રીમદજીને બતાવે ને ઉસી બાત કો યહાં આગે તક ઉન્હોને ખીચા હૈ ઓર કહેતે હૈ કે જે સદા મુક્ત સ્વરૂપ છે ત્રિકાળી સ્વભાવ છે તેમાં નજર સ્થિર કરતા એટલે એમાં મગ્ન થતા જે મુક્ત જણાય છે એટલે મેં મુક્ત સ્વભાવી હું એસા જબ જાનને મેં આતા હૈ બસ આજ મોક્ષ છે. સમજાણું કાંઈ તો એ મોક્ષ કોનસે ગુણસ્થાન મેં હોગા મેરા યે પ્રશ્ન હૈ. દેખો પ્રશ્ન ક્યાં પૂછા મેને, મોક્ષ કોનસે ગુણસ્થાન મેં હોગા? બોલો પિનાંગભાઈ, આપકા કહેના ગુણસ્થાનાતીત હોગા જબ હોગા. બેન રશ્મિબેન બરાબર હે નામ, હા બોલો. અરે ભાઈ હમ હોગા યાને પર્યાય કી બાત પૂછ રહે આપકો, અરે ગુણસ્થાન મેં હોગા એસા ભી પૂછ રહે. નહીં માલુમ હૈ, હા આપકા ભી એસા કહેના, ઓર અભી કિસને ઉત્તર દિયા થા આપને ભી એસા કહા. ભૈયા ચોથે ગુણસ્થાન મેં દૃષ્ટિ મુક્ત હૈ, ક્યો ઉસ સમય ઉસને જાના કે મુક્ત સ્વભાવી હું. દેખો ફિર સે યહાં લિખા હૈ, મેં નહીં બોલતા હું, જે સદા મુક્ત સ્વરૂપ જ છે તેમાં નજર સ્થિર કરતા. અભી એ ગુણસ્થાન આદિત કે બાદ નજર સ્થિર હોગી ક્યા? હા ખ્યાલ મેં બેન, તે મુક્ત જણાય છે. એ ક્યારે જણાય? 14, 12 ગુણસ્થાનમાં, 13 ગુણસ્થાનમાં. અરે સમ્યક દર્શન થતા જ તેને એ જણાય છે કે હું મુક્ત છું, બસ આ જ મોક્ષ છે. અને એને દૃષ્ટિમુક્ત કહેવાય છે, દૃષ્ટિમોક્ષ કહેવાય છે. શ્રદ્ધા મેં મુક્ત હું, એસી શ્રદ્ધા હોઈ બસ મેં મુક્ત સ્વરૂપ હું. સમજાણું કાંઈ? અહીં કહે છે કે કર્મ એક જ માનવામાં આવ્યું છે, અર્થાત એક જ માનવું યોગ્ય છે. લ્યો કળશ પૂરો થયો. અથ ઉભયમ કર્મ અવિશેષેણ બંધ હેતુ સાધયતિ.
નીચે ઉસકા અર્થ લિખા હૈ,
હા બતો.
હવે શુભ અશુભ બંને કર્મો અવિશેષપણે, વિશેષ અને ઉસમે કોઈ અંતર કરના ઉસકો વિશેષ કહેંગે, અવિશેષ અને કોઈ તફાવત કિયે બિના, કઈ તફાવત વિના બંધના કારણ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. गाथा पढ़ेंगे अभी हम.
सोवर्ण्यं पिणीयलं बन्दधिकालाय सम्पिजः पुरुषम् बन्दध्येवं जीवम् सुहमसुहं वा कदम्बकम् सौवर्णिकमपि निगलम् बध्नाति कालाय समपि तथा पुरुषम् बध्नायेवं जीवम् शुभमशुभं वा कृतं कर्म जमलोहनु यमकनकनु जंजीरजकडे पुरुषने एवीरिते शुभके अशुभकृतकर्म बांधे जीवने जमलोहनु यमकनकनु दंजीरजकडे पुरुषने एवीरिते शुभके अशुभकृतकर्म बांधे जीवने.
देखो यहाँ पर कुंदकुंदा आचार्य भी आज से करीबन 2000 साल पहले यही बात बताते हैं कि जो हम शुभ बंधन को अच्छा मानते हैं, यानी शुभ कर्म करेंगे तो हमें अच्छे बंध होंगे, वो शुभ बंधन है, और जो अशुभ बंधन है उसको बुरा मानते हैं, तो इसका निषेध उन्होंने 2000 साल पहले किया है. ये तो गुरुदेव पहले बहुत बार बोलते थे कि शुभ भाव तो लोहे की बेड़ी है और अशुभ भाव तो शुभ भाव तो सोने की बेड़ी है, अशुभ भाव तो लोहे की बेड़ी है. लेकिन बेड़ी क्या करती है तो वह तो बंधन में ही डालती है. वैसे ये बात तो एक्चुअली कुंदकुंदा आचार्य ने कही थी, लेकिन जब हमने पहली बार जब स्वामी जी के मुख से सुना, ओहो हो कितनी बढ़िया बात, ये तो बात कभी हमने सोची नहीं थी. यानी जैसा हम देखते हैं शिवाजी राजा को औरंगजेब ने कैद करके रखा था, तो उसको तो पूरी छुट्टी, कैद यानी क्या, दरवाजे बिरवाजे बंद करके अंधेर कोठड़ी में नहीं डाला था, पूरा जैसा अपना एक रिसोर्ट रहता है वैसा पूरा आने जाने का मतलब, लेकिन बाहर सारे पुलिस सिपाही उसको बाहर पूछे बगैर नहीं जा सके. तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही था ना, उसको खाने पीने की कोई ओछी नहीं थी, जब चाहे जो मिले खाएं, लेकिन एक किसी न किसी जकड़ में पड़ा हुआ था. वैसे यहां कह रहे हैं कि शुभ भाव करने से तुझे अच्छे अनुकूल संयोग मिलेंगे, लेकिन वह भी बंधन है, और बंधन की अपेक्षा दोनों एक समान है. देखो देखो पहले के जमाने में ऐसे जेल में जो लोगों को रखते थे तो उनके पैर में साकल बांधकर ऐसे इतने इतने लोहे के ये बांधते थे गोल, हाँ, ताकि वो भागे नहीं. तो मैं कहता हूँ लोहे के जगह सोने के लगाते तो भाग सकता था ही नहीं सोना लेके, दोनों ही उसको जकड़ के रखते थे. ऐसी बात है, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं. जम लोहनु तम कनकनु जंजीर जकड़े पुरुषने, हाँ, ये तो बहुत आसान गुजराती है. ए वीर ते शुभ के अशुभ कृत कर्म बांधे जीवने, यानी ये जीव ने शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है तो वह जीव को बांधने वाली है, यानी बंधन में ही डालने वाले हैं. हमने अभी इसके पहले यह देखा था ना कि ये कर्म इस जीव को संसार में ही रखड़ावे, संसार में ही दाखिल करे, उसको हम सुशील कैसा कहेंगे, अच्छे कैसा कहेंगे. तो यही बात वहां, ये सेम थिंग इज बीइंग एक्सटेंडेड. क्या कह रहे हैं देखो, ये गाथार्थ, यथा इटले जेम सौवर्णिकम सुवर्णनी निगलम बेड़ी अपि पण पुरुषम पुरुष ने बधनाति बांधे छे. क्या कहते हैं, जेम सुवर्णनी बेड़ी पण पुरुष ने बांधे छे, अने काला यसम लोखंडनी
अभी गुजराती अपने संस्कृत छोड़ देते हैं, लोखंडी पण बांधे छे तेवी रीते शुभ तेमज अशुभ करेलू कर्म जीव ने अविशेषपने बांधे छे, याने कोई तफावत विना, याने कोई भी फर्क किए बिना वो बांधते ही है। टीका में क्या लिखते हैं देखो, जेम सुवर्णनी अने लोखंडनी बेड़ी काई पन तफावत विना पुरुष ने बांधे छे, कारण के बंधन पनानी अपेक्षाए तेमनामा तफावत नथी। तेवी रीते शुभ अने अशुभ कर्म काई पन तफावत विना पुरुष ने बांधे छे। यहां देखो क्या कहते हैं, ये जो 146 नंबर की हरि गीत है ना, उसमें दूसरे लाइन में शुभ के अशुभ कृत कर्म, ये कृत कर्म यानी जीव के भाव कर्म की बात ली है। देखो देखो नीचे बताए, तेवी रीते शुभ के अने अशुभ कर्म काई पन तफावत विना कारण के बंधपना नी अपेक्षा तेमना मत ठर ठर ठर, शुभ अने अशुभ कर्म, ये कर्म यानी शुभ जीव के भाव कर्म लेना, काई पन तफावित विना पुरुष ने बांधे छे, यानी उसमें कर्म बंध होता है ना, कारण के बंध बनाने अपेक्षा तेमना में तफावत नहीं। हवे शुभ अशुभ बनने कर्मो अविशेषपने काई तफावित विना बंधना कारण छे एम सिद्ध करे छे। अभी गाथार्थ ऊपर नु प्रवचन, ये गाथार्थ जो है उसके ऊपर प्रवचन दे रहे, जेम सुवर्णनी बेड़ी पन पुरुष ने बांधे छे अने लोखंडनी पन बांधे छे, तेवी रीते शुभ तेमज अशुभ करेलू कर्म, तो जीव कर्म को करेगा या शुभ भाव करेगा या अशुभ भाव करेगा, है ना, ख्याल में आ गया ना, करेलू कर्म जीव ने अविशेषपणे बांधे छे। आई गाथा में कदम कम्मम शब्द छे ने, मतलब के करेलू करायेलू शुभाशुभ कर्म कर्म बंधन नु कारण छे, पण जाननार ने रहीने थयेलू कर्म कर्म बंधन नु कारण नथी। संस्कृत में कृतम कर्म एम पाठ छे, एटले के करता थईने करेलू शुभाशुभ कर्म जीव ने बांधे छे। एक न्यायपने अंदर चिदा विराजमान भगवान आत्मा चैतन्य बिंब प्रभु त्रिकाण एकलो ज्ञानानंद नो सागर छे। आवा ज्ञानानंद स्वरूप नी जेने दृष्टि नथी ते अज्ञानी जीव ने शुभ के अशुभ राग रूप करायेलू कर्म बंधनु कारण थाय छे। आ गई ना बात यहाँ, यानी वो भाव कर्म के लिए उसका यूज किया है। देखो अज्ञानी जीव ने शुभ के अशुभ रूप करायेलू कर्म बंधनु कारण थाय छे, परंतु ज्ञाता थईने जे जाननारपने परिणमे छे तेने तो ते शुभाशुभ कर्म ज्ञान नु ज्ञेय थाय छे, यानी उसमें उठने वाले जो शुभाशुभ परिणाम है उसके ज्ञान के ज्ञेय है। भगवान आचार्य देव ने आई एम सिद्ध कर्मु छे के अज्ञानी राग ने पोतानु कर्तव्य अथवा करवा लायक कार्य माने छे, अने तेथी तेने करेलू शुभाशुभ कर्म अवश्य बांधे छे, पण जे मात्र जाने छे तेने ते कर्म बंधन नु कारण थतु नथी। मात्र जाने छे, ये कौन मात्र जाने छे, हाँ ज्ञानी, तो उसको कर्म बंधन नहीं है, जानन रूप जो कार्य हो रहा है वो कर्म बंधन नहीं, और जो राग जो कुछ बाकी है उससे जो कर्म होगा वो आनंद संसार का कारण नहीं, इसलिए उसको यहाँ बंधन कारण नहीं है, ऐसा बोले है बंध है नहीं के बराबर, क्योंकि ये बहुत लंबे काल का जो कर्म बांधता है अज्ञान दशा में वैसा नहीं बांधेगा। बारहवीं गाथा में कहू छे नी के ज्ञानी ने जे व्यवहार आवे छे होय छे ते जानेलो प्रयोजनवान छे। ये ज्ञानी ने जे व्यवहार आवे छे इसका अर्थ क्या, जो राग द्वेष के परिणाम जो है शुभ अशुभ भाव है वो जो व्यवहार आवे छे होय छे यानी होता है उसको ते जानेलो प्रयोजनवान छे, यानी वो जानने के लिए है, यानी वे उसके ज्ञान के गेय है, जाने लो प्रयोजन, यानी करने जैसा है, करने के लिए है, ऐसी बात नहीं है। बस ज्ञानी तो उसको जानेगा ही, उसका वो करता नहीं होगा, उसमें होंगे वो राग परिणाम आएंगे। केटलाक लोको जे वो आचार्य भगवान ना आशय ने समझता नथी ते वो कहे छे के व्यवहार नो एटले व्यवहार आचरवानो उपदेश करवो पण एम नथी, यानी उसका अर्थ उन्होंने व्यवहार नो उपदेश करवो ऐसा लिया, पण एम नथी प्रभु, व्यवहार त्यां जे होय छे तेने जाणवो बस। अरे भाई, राग जानेलो प्रयोजनवान छे, करेलो के करायेलो नहीं, समझाणो काई कयुं छे ने अहीं के बंधती जेवम जीवम सुहम असुहम वा कदम कम्मम, करेलु करायेलु शुभाशुभ कर्म पुरुष ने एटले आत्मा ने बांधे छे, शुभाशुभ भाव होय छे खरा, पण ए जाणवा योग्य छे, आचरवा योग्य एटले उपादेय नथी। भाई थोड़ा फेर में बधो मोटो फेर पड़ी जाय छे, अर्थात जाणवामां ज्ञातापणानो अकर्तापणानो सम्यक भाव छे अने करवामां कर्तापणानो मिथ्यात्व भाव छे। देखो ब्रैकेट में भी सारी बातें अच्छी तरह से बताई है, ये आपको ये बात समझ में आ रही ना, नहीं तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। वीरेश भाई बात बराबर बैठती है ना, क्योंकि इतना आसान समझाया उन्होंने, उसमें अपन क्या बतावे। पहले तो लिखा कि जो ज्ञानी है उसको शुभाशुभ भाव होय छे खरा, पण ते केवा छे, जाणवा योग्य छे, एटले आचरवा योग्य नथी, याने आचरवा योग्य नथी का याने उपादेय नहीं है, उपादेय नहीं याने उसका आश्रय लेने योग्य नहीं है, जानने के लिए ओके है। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं लास्ट बट वन लाइन में, अर्थात जानवा मा ज्ञातापनानो एटले अकर्तापनानो सम्यक भाव छे, यानी तुम उसको सिर्फ जाने लो प्रयोजनवान समझकर जानोगे, राग द्वेष के परिणाम तो होने हैं, होते हैं सम्यक दृष्टि के, लेकिन वो उसके ज्ञान के गेय है, और यह समझाते कि वो जानवा माटे छे बस, करवा माटे नथी। अने करवा मा एटले पहला शुभाशुभ भाव, करवा मा कर्तापनानो मिथ्यात्व भाव छे, यानी वो उसका मैं करता हूं ऐसा माने तो वो मिथ्यात्व भाव हो गया। टीका ऊपर नु प्रवचन, जेम सुवर्णनी अने लोखंडनी बेड़ी काई पन तफावत विना पुरुष ने बांधे छे, कारण के बंदपनानी अपेक्षाए तेमनामा तफावत नथी। जो बेड़ी लोढ़ानी होय के सोनानी होय, बन्ने कोई पन तफावत विना पुरुष ने बांधे ज छे। सोनानी बेड़ी भले देखवामा सारी लागे, पन बंधननी दृष्टिए तो बन्ने समान ज छे, काई फेर नथी। ये ऐसा है ना, अपने हिंदुस्तान में ऐसी पद्धति है और होती होगी पहले, कि जब शादी करके बीवी को लाते तो उसको बहुत सोना वोना लगाते हैं, क्यों? कि उस लोभ से वो भागे नहीं, इधर ही बैठे अपने पास। ऐसा रहता है ना कि पहला तो दहेज लेगा और फिर उसके आंग पे मन दो मन का सोना चढ़ाएगा। देखो देखो पहले के आप देख लें, ऐसे पैर में इतने बड़े बड़े उसको तोड़े बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, थोड़ा बोला है ना, हाथ में भी ऐसा इधर, अभी तो घसरते घसरते तो चांदी के हो गए, पहले तो सोने के, गले में ऐसा बना लेते गर्दन झुक जावे, ये सब सोने की बीड़ी है वो। हाँ मेरे कितना इधर सब है, अरे तेरे को मूर्ख, बिना पगार का नौकर रखे दिन भर काम कराएंगे। नींद आ जाए गाना गाने। क्या कहते देखो, यहाँ तो कहते कि बेड़ी लोड़ा नहीं हो कि सोना नहीं हो, बनने कोई पन तफावित होना, पुरुष ने बांधे जो छे सोना नी बेड़ी भले देखवा में सारी लगे हाँ, पन बंधन नी दृष्टि तो बनने समान छे, काई फेर नहीं। जुओ एक वह हती, चलो इन्होंने भी दिया हाँ, एने गड़ा में एक सोना नी साकड़ी पहरेली, साकड़ी में एक खूब भारे चगदू हतु, चगदू एने क्या भाई पेंडेंट भारे, अभी सुनना चगदू लोढ़ाना एक शेर न ऊपर नी सोना थी मड़ेलो हतु, यानी अंदर तो लोहा था ऊपर खाली एक पतरा डाला था, काय का हाँ। स्वामी जी को क्या क्या बातें मालूम है, देखो देखो कहते चगदू लोढ़ाना एक शेर नु ऊपर थी सोना थी मड़ेलो हतु, वलेनु वलोनु करती वक्ते आ चगदू आम तेम छाती अथड़ाई ने वागे, એટલે સાસુએ વહુને કહ્યું વહુજી હમણાં વલેનું કરતી વેળા સાકડી છોડી દો, પણ વહુને તે કાઢવાનું મન ન થાય કેમ કે સાકડી સોનાની ખરી ને, એટલે ચગદું છાતીમાં વાગે પણ વહુ સાકડી છોડે નહીં, ઉલટી ખુશ થાય। વાહ, તેમ અજ્ઞાની જીવને અનુકૂળ સંયોગો મળતા સંયોગની ભાવના છોડતો નથી। ज्ञानी तेने कहे छे के भाई संयोगनी दृष्टि दुखकारी छे, संयोगनी दृष्टि छोड़ी दे, पण तेने संयोग अने संयोगनी दृष्टि छोड़वानु मन थतु नथी, केम के संयोग थी सुखमयनु छे, अनुकूलतामां पण पराधीनतानु दुख होवा छता सुख मानीने अज्ञानी तेमां खुशी थाय छे। આય કહે છે જેમ સુવર્ણ અને લોખંડની બેડી કાંઈ પણ તફાવત વિના પુરુષને બાંધે છે, તેવી રીતે શુભ અને અશુભ કર્મ કાંઈ પણ તફાવત વિના પુરુષને, એટલે અહીંયા જીવને ઓ બાંધે છે, કારણ કે બંધપનાની અપેક્ષાએ તેમનામાં તફાવત નથી। યહાં પુરુષ કી બાત કીએ ના તો હા, એ જેન્ટ્સ કે લીએ લેડીઝ કે લીએ, એસા નહીં હૈ, પુરુષ ઇસલિએ જીવને લખ્યા, કાંઈ પણ તફાવત વિના બાંધે છે। ભાષા જોઈ ગાથામાં કદમ કમમ કરેલું કર્મ શબ્દનો અર્થ અહીં ટીકામાં કાંઈ પણ તફાવત વિના અવિશેષપણે એમ કર્યો છે, મતલબ કે અશુભ કરાયેલો ભાવ હોય કે શુભ કરાયેલો ભાવ હોય બંનેમાં ફરક નથી, કેમ કે કર્તા બુદ્ધિમાં કોઈ ફેર નથી। એનોને એક નહીં વાત ઉઠાય અને તેથી બંને સમાનપણે કર્મબંધનનું કારણ થાય છે। જે કરતા થઈને શુભ કે અશુભ ભાવ કરે છે તેને એ બંને ભાવ કાંઈ પણ તફાવત વિના કર્મબંધનનું કારણ થાય છે। અભી આપને યહાં ભી એ બાત નીકળી હતી એક બાર કે ભાઈ જબ તક સમ્યક દર્શન નહીં હોતા હૈ તો શુભ ભાવ તો કરને હી ચાહીએ, ये करने ही चाहिए में उसके प्रति विशेष राग है, उसके प्रति रुचि है, और उस रुचि का ही यहाँ इनकार मतलब उसका ही निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ तो कैसा कहते हैं, तो कर्ता बुद्धि में कहीं फेर नहीं भाई, हाँ हाँ ठीक है अशुभ भाव नहीं करे बराबर, पर शुभ भाव तो करना चाहिए ना। तो ये क्या कह रहे देखो, अशुभ कराए लो भाव हो, नीचे से चौथी लाइन है या अभी पैराग्राफ पढ़ा ना, અશુભ કરાયેલો ભાવ હોય કે શુભ કરાયેલો ભાવ હોય બંનેમાં ફરક નથી, કેમ કેમ કે કરતા બુદ્ધિમાં કાંઈ ફેર નથી, એને દોનો હી મેં કર સકતા હું, એ નહીં કરના જોઈએ કરના ચાહીએ, અને તેથી બંને સમાનપણે કર્મબંધનનું કારણ થાય છે। ચલો આનાથી જુદું જ્ઞાનીને કરતા બુદ્ધિ નથી, એ જ્ઞાની કી બાત, ઉપર કી અજ્ઞાની કી બાત, જ્ઞાતાની દ્રષ્ટિ છે, શુભને જાણતા ઠીક અને અશુભને જાણતા અઠીક, એમ શુભાશુભ ભાવમાં જ્ઞાનીને ઠીક અઠીકની બુદ્ધિ નથી। ખરેખર તો જ્ઞાની એ શુભાશુભ ભાવને ક્યાં જાણે છે, એ તો શુભ કે અશુભ ભાવના કાળમાં પોતાની સોપર પ્રકાશક જ્ઞાનની જે પર્યાય થાય છે તેને જાણે છે। જે પ્રકારનો રાગ છે તે સમયે તે જ પ્રકારની પરપ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાય થાય છે। ત્યાં રાગને લઈને નહીં પણ પોતાની સ્વપ્ર પ્રકાશક પર્યાયના સામર્થ્યને લઈને એનું જ્ઞાન છે. અભી મેરે કો લગતા યે કલી પઢેંગે તો ઓર અચ્છા રહેગા, ક્યોંકિ ઓર એક્સપ્લેનેશન કી ગરજ હૈ ઇસમે. જાવાની કે જ્ઞાન.